नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे लगभग 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इनसे समुद्र तटीय प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क संपर्क और चिकित्सा क्षेत्र को लाभ होगा।
आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में अकेले समुद्र क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्य 7,800 करोड़ से अधिक है। इनमें मुंबई में एक नया क्रूज टर्मिनल, कोलकाता और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर नई कंटेनर सुविधाएं और कंडला के दीनदयाल बंदरगाह पर ग्रीन बायो मेथेनॉल प्लांट जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात के लिए 26,300 करोड़ से अधिक की कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें छारा बंदरगाह पर एलएनजी टर्मिनल जैसे नए ऊर्जा संयंत्र और 70 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 मार्गीय परियोजना शामिल है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधन की अनुमति के पक्ष में मतदान किया। 193 सदस्य देशों में से 145 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अमरीका और इसराइल ने प्रस्ताव का विरोध किया। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए फलस्तीन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार किया। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 25 सितंबर को विश्व समुदाय को संबोधित कर सकेंगे। भारत ने फलस्तीन को 1988 में मान्यता दी थी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान में नौकरी के वायदे या प्रस्ताव के झांसे में न आने की सलाह दी है। हाल में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को ईरान में रोजगार देने या किसी अन्य देश में नौकरी के लिए भेजे जाने का प्रलोभन दिया गया। ईरान पहुंचने पर इन लोगों का आपराधिक गिरोह ने अपहरण कर लिया और उनकी रिहाई के लिए परिवार से फिरौती मांगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान सरकार भारतीयों को केवल पर्यटन वीजा पर प्रवेश की अनुमति देती है। नौकरी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ईरान में वीजा मुक्त प्रवेश का वायदा करने वाले एजेंट आपराधिक गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत एक बार फिर विश्व डाक संघ की प्रशासनिक परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय डाक व्यवस्था के सुधारों और डिजिटल पहलों में विश्व समुदाय के विश्वास का पता चलता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते नेतृत्व का परिचायक है। भारत 1876 से ही विश्व डाक संघ का सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटा सकता। आयोग ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में भी किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया गया है। आयोग ने बताया कि 2023 में नाम हटाने के संदिग्ध प्रयास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग के अनुसार अलंद में नाम हटाने के लिए 6,018 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 24 ही सही पाए गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राजूरा के मामले में मतदाता पंजीकरण के लिए 7,792 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 6,861 आवेदन अमान्य पाए गए थे। एस्टोनिया ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री मागस साकना ने कहा कि रूस के 3 MiG-31 विमानों ने कल उत्तरी फिनलैंड की खाड़ी में 12 मिनट तक उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रूसी दूतावास के अधिकारी को बुलाकर विरोध दर्ज कराया गया है। घुसपैठ को देखते हुए एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन माइकल ने नेटो में शीघ्र ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में आज दिल्ली में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।